ओम शांति। सभी ने प्रभु पालना का सुख लिया? माताओं ने लिया? लिया? कितना अच्छा है बाबा, बहुत अच्छा है। अच्छा, संगम युग, ये सुंदर समय भाग्यवान आत्माओं को और पुण्य आत्माओं को ही प्राप्त हुआ है। सभी चिंतन करें, हम बहुत भाग्यवान हैं, बहुत पुण्य आत्माएं हैं। भगवान साथ दे रहा है, भाग्य बनाने का सुंदर अवसर हमारे हाथ में आ गया है। हम क्या कर रहे हैं? रोज हरेक बाबा के बच्चे को थोड़ा सा समय निकाल कर अपने से मिलना चाहिए। दूसरों से तो सदा ही बातें करते हैं, दूसरों को हर पल देखते हैं, लेकिन प्रतिदिन अपने से बातें करना, अपने को देखना, अपने से मिलना बहुत जरूरी है। कैसे मिलें? अपनी शक्तियों पर ध्यान दें। मनुष्य अपनी शक्तियों को भूला रहता है, अपनी शक्तियों की स्मृति में आए। बहुत शक्तियां हैं हम सबके पास। साधारण माताएं मेरे सामने बैठी हैं, शक्तियां हैं आपके पास या नहीं? बोलो, हैं? कहां से आई? जब से हम बाबा के बच्चे बने हैं, बाबा ने अपनी शक्तियां हमें दे दी हैं, दो कामों के लिए, माया को जीतने के लिए और समस्याओं को समाप्त करने के लिए। बाकी योग से हमें शक्ति लेनी है विकर्म नष्ट करने के लिए। अटेंशन दे सभी, शक्तियां हमारे पास हैं। हम इस संसार में बेफिकर बादशाह बनकर रह सकते हैं। रहना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। अपने से मिले रोज, 10 मिनट हर एक को निकालना है। अपनी शक्तियों को पहचाने, वो हमें साथ देने के लिए तैयार हैं। अपनी कमियों को देखें, वो हमसे दूर जाने के लिए तैयार हैं। वो हमसे मुक्त होना चाहती हैं, हमने उन्हें पकड़ा हुआ है। क्या विचार है भाइयों का? ठीक बात है या नहीं? अपनी शक्तियों पर भी एक दृष्टि डालें। ऐसे नहीं हम अपनी कमजोरियों की लंबी लिस्ट ले आए सामने और निराश हो जाएं। केवल एक दृष्टि डाल लें, अपनी कमियों का एहसास होना, उनको निकालने के लिए तत्पर होना, यही उनको निकालने की विधि है, पहला कदम है। बहुतों के साथ क्या हो रहा है कि उन्हें ये पता ही नहीं कि मेरे अंदर कहां मैंपन काम कर रहा है। हर मनुष्य का मैंपन उसे परेशान कर रहा है, उसकी अनेक समस्याओं का कारण उसका मैंपन है। बहुत अच्छी तरह याद कर लें, 10 मिनट बैठें, सामने बाबा खड़ा है और कह रहा है, बच्चे अटेंशन, क्या? जहां मैं है वहां मैं नहीं हूं, जहां तेरा है वहां मेरा भी सब कुछ है। रोज अपने को कुछ स्मृतियां दिलाते रहना है। पसंद है? रोज निकालेंगे 10 मिनट? ये माताएं बहुत बिजी रहती हैं। किसमें? कामकाज में? नहीं। किसमें? बाबा की याद में? नहीं। किसमें? भाई बताएंगे माताएं किसमें बिजी रहती हैं? भाई तो कामकाज में बिजी रहते हैं। चलो भाइयों से नहीं पूछते, माताएं किसमें बिजी रहती हैं? बातों में रहती हैं या नहीं? एक माता मेरे पास आई परसों, किचन भी देखा, अच्छे परिवार से है। कहा मुझे एक बात पूछनी है, मेरे अंदर एक बहुत बड़ी कमी है, उसका हल मुझे चाहिए। मुझे बहुत खुशी हुई उसकी बात सुन के। कहा साहूकार घर है, नौकर चाकर काम करने वाले हैं, काम धाम ज्यादा नहीं है। कहा मैं पर चिंतन बहुत करती हूँ। मैंने कहा तुम सचमुच ज्ञानी आत्मा हो जिसे अपने पर चिंतन का ज्ञान है, नहीं तो अधिकतर लोगों को क्या हो रहा है, वो पर चिंतन बहुत कर रहे हैं और उन्हें वो कहते हैं हम कभी पर चिंतन नहीं करते। तो मैंने उसे कहा तुम तो समझो मुक्त हुई की हुई, बस एक दो विधि अपना लें और लक्ष्य रख ले मुझे पर चिंतन नहीं, संगम युग पर अपना चिंतन करना है पहला कदम, तो मुक्त तुरंत हो जाएंगे। अपनी कमियों का पता होना, अपनी कमियों को स्वीकार करना, उन्हें निकालने का प्रयास करना, ये भी निर्मल मन की पहचान है। अपनी शक्तियों को पहचान लें सभी और बहुत अच्छी तरह जान लें, जो पवित्र हैं, जिनका चित्त निर्मल है, कपट से मुक्त है, जो निश्चल हैं, उनके संकल्पों में शक्ति है असंभव को संभव करने की। हम अपनी शक्तियों को छल कपट में, दूसरों को गिराने चढ़ाने में, दुर्भावनाओं में, बदले की भावना में नष्ट न करें, सभी चिंतन करें, अपने से बात करेंगे, हमें प्रभु पालना मिल रही है, फायदा उठाएं, भगवान हम पर राजी हुआ है। हुआ है किस किस पे राजी हुआ है, हाथ उठाएंगे, भगवान हम पर राजी हुआ है तो अपने सद्विवेक का प्रयोग करें, इस स्वर्णिम अवसर का कैसे फायदा उठाएं। कोई मंत्री हम पे राजी हो, कोई एमएलए हम पे राजी हो, सब फायदा उठा लेते हैं ना, माताएं भी उठा लेती हैं, सबके पास विवेक है अवसर का फायदा उठाने का। हमें सर्वश्रेष्ठ अवसर प्राप्त है, भगवान राजी हुआ है, अपना सब कुछ देने के लिए तैयार है, तैयार है ना, फायदा उठाएं। तो हमारा संगम का सुंदर समय व्यर्थ में न बीत रहा हो, सभी ध्यान दें। व्यर्थ जो बाबा ने गिफ्ट ले ली ना अभी, जो आत्मा को परेशान करता है, जो हमारा सुंदर समय नष्ट कर देता है, हम अब अंतर्मुखी हो जाएं। मेरे पास बहुत भाई बहने आते हैं अपनी समस्याएं लेकर, निश्चित रूप से घर घर में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और बढ़ती जाएंगी, बढ़ेंगी या घटेंगी, और बढ़ेंगी कुछ कारणों से। सबसे प्रथम कारण होगा संसार में हरेक का बढ़ा हुआ पाप कर्म, कर्मों का खाता, कर्मों का खेल, अब मनुष्य को चैन से सोने नहीं देगा। जिसने जो पाप किए हैं उसका सामना उसे करना ही है या मुक्त हो जाएंगे। मुक्त होना है तो योग की अग्नि जलानी पड़ेगी। तो एक पाप कर्मों का खाता, कर्म बंधन में डालने वाला खाता, मन को बेचैन करने वाला खाता समस्याओं को जन्म दे रहा है। दूसरा, चारों ओर लगी हुई विकारों की अग्नि मनुष्य की शांति को जला रही है, टेंशन पैदा कर रही है, और जहां मनुष्य का चित्त शांत नहीं होता वहां समस्याएं विकराल रूप ले जाती हैं। तीसरा कारण मनुष्य के अपने संस्कार, उसका अपना स्वार्थ, उसकी अपनी कामनाएं समस्याओं को बढ़ावा दे रही हैं। बहुत घर ऐसे हैं जहां धन बहुत है लेकिन एक दो के संस्कार सबको के सुख शांति को छीन लेते हैं। एक दो का क्रोध घर में ऐसी अग्नि प्रज्वलित करता है कि सुख चैन सभी का समाप्त हो जाता है। इन कारणों पर हम ध्यान दें, इनका भी हमें निवारण करना है। और शुरुआत करेंगे हम स्वयं से। कैसे? कि मुझे अपने संस्कारों को निर्मल करना है, सॉफ्ट करना है, दूसरों को बदलने की बजाय किसे बदलना है? तैयार हैं खुद को बदलने के लिए? इसलिए बाबा ने हमें स्लोगन दे दिया, नारा दे दिया, अपने को बदलो तो जग बदल जाएगा। इसका कारण भी है, इसके पीछे रहस्य भी है, क्योंकि हम संसार की आधार मूर्त आत्माएं हैं, क्योंकि यहाँ चुनी हुई इष्ट देव और इष्ट देवियां बैठे हैं, महान आत्माएं हैं, सभी महान बदलेंगे, उनके साथ हजारों लोग बदल जाएंगे। एक एक के साथ, मैं हजार कह रहा हूं, लाख न कह के, हजारों आत्माएं जुड़ी रहती हैं एक एक के साथ। और जो जितना महान है, जो इस सृष्टि के हीरो एक्टर हैं, उनके साथ लाखों और फिर करोड़ तक आत्माएं जुड़ी रहती हैं। उनका निर्मल चित्त, उनकी पवित्र भावनाएं, उनकी शुभ भावनाएं, उनका अपना बदला हुआ जीवन सबको बदलने की प्रेरणा देता है। मैं एक छोटी सी अनुभव की बात सुनाऊं आजकल की, सबके लिए ये बात मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसी माता ने कहा, एक ऐसी माता जो यंग एज में पवित्र जीवन अपना चुकी, जिसको एक बच्चा, पति, दोनों से वो अलग रही श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने के लिए, बहुत बड़ा त्याग है ना, विकारों का त्याग कर दिया, संसार की इच्छाओं का त्याग कर दिया, लोगों की गालियां भी बहुत सुनी होंगी। छोटी आयु में कोई ऐसा करे 30 साल की आयु में तो कितना सुनना पड़ता है समाज का। लेकिन क्या हुआ, एक लंबा चौड़ा बड़ा बहुत सुंदर त्याग करने के बाद अब तक जीवन में संतोषजनक प्राप्तियां नहीं हुई। 20 साल हो गए, 20 साल में आत्मा तृप्त नहीं हुई तो उनके मुख से निकला, हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमारा तो योग भी नहीं लगता, हमें तो निरंतर खुशी और नशा भी नहीं रहता, हम क्या करें? सभी चिंतन करें, आज यहां बैठकर मेरे साथ सभी ने बहुत बड़ा त्याग किया है। विकारों का त्याग करना, श्वेत वस्त्र धारण कर लेना, सांसारिक इच्छाओं से मुंह मोड़ लेना, सत्य के मार्ग पर चल पड़ना, बहुत बड़े त्याग हैं। त्याग करके हम खाली न रह जाएं, त्याग करके हम कहीं उलझे न रह जाएं, त्याग करके हम समस्याओं में न गिर जाएं, त्याग करके हम सांसारिकता के पीछे न भागने लगे। कुछ कुमारों के साथ ये हो गया, त्याग कर दिया, पवित्र जीवन की प्रतिज्ञा कर ली, अब तक निभाते आ रहे हैं, लेकिन एक इच्छा हो गई, बहुत पैसा कमा लूं, सेवा करूंगा, यज्ञ में धन से सेवा करूंगा, और ऐसे उलझ गए कि न धन मिला न स्थिति मिली, जीवन उदासी से भर गया। इसको बाबा स्वीकार नहीं करता। बाबा कहा करते थे साकार में, किसी ने बाबा से यही प्रश्न पूछा था, बाबा ने कहा नहीं, किसी के धन की यज्ञ को जरूरत नहीं है, तुम अपनी स्थिति को महान बनाओ, धन तो तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएगा। लोग गलती क्या कर रहे हैं, धन के पीछे जा रहे हैं, स्थिति पीछे भाग रही है दूर। सिद्धांत ये है, स्थिति को महान बनाओ, प्रकृति सब कुछ स्वतः ही प्रदान करेगी। समझ ले इस रहस्य को, भगवान ने कह दिया, जिनके पास ज्ञान धन बहुत होगा उन्हें स्थूल धन कमाने में मेहनत नहीं लगेगी। सभी भाई अटेंशन से सुन लें, धन के पीछे नहीं भागना है, धन आपके पीछे भागता हुआ आ जाए। अगर हम प्रकृति के मालिक बन जाएं, अगर हम अपनी प्योरिटी को बहुत ऊंचा उठा दें, तो धन संपदा हमारे पीछे पीछे भागेगी। सुना माताओं ने, सुन लिया सभी ने? माताओं को जरा ज्यादा इच्छा होती है धन संपदा की, इच्छा रखो, मैं नहीं कहता आप गरीब रहो, बहुत धनवान हो जाओ, लेकिन धन के पीछे भाग कर नहीं, धन को आने दो आपके पीछे। लक्ष्मी कौन है, कौन है लक्ष्मी? माताएं बोल नहीं रही, भाई तो बोल रहे हम हैं। माताएं लक्ष्मी स्वरूपा हैं, धन देने वाली या मांगने वाली? हाथों से धन बिखरने लगेगा या ऐसे फैलाएंगे, थोड़ा सा दे दो? धन के पीछे भागना माना धन की अधीनता स्वीकार कर लेना, हम अपने स्वमान में आ जाएं, अपनी श्रेष्ठ स्थिति में आ जाएं, धन पीछे पीछे भागने लगेगा। एक बात और याद आ गई, खास माताओं से कहनी है, कोई बुरा तो नहीं मानेगा। देखो मैं स्पष्ट कह देता हूं, थोड़ी अच्छी बातें हैं। कई लोग परिवारों में मेरे पास आते हैं, बड़े भाई ने सारी संपत्ति अपने पास रख ली, हमें कुछ नहीं दिया। बेचारे मन मार के रह जाते हैं। कई केस इसी बाबा के ग्रुप में, कुमार भी मेरे पास आए तो कई अधर कुमार माताएं भी आई। बड़ा भाई बहुत तेज तराक है, उसकी सबसे पहचान है, उसने हमें कुछ नहीं दिया, सब पे अपना कब्जा जमा लिया। बोलो क्या उत्तर देंगे? मैंने तो उनको कहा, शांत किया, पहली बात, दूसरों की संपत्ति से कोई मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। यूनिवर्सल सिद्धांत, इटर्नल सिद्धांत, अविनाशी सिद्धांत है सृष्टि का। वो खुश हो जाएंगे, हमने भाई को चला दिया, हम बहुत साहूकार हैं, लेकिन उनके पास असली संपत्ति कभी नहीं आएगी, उनका धन वैसे ही चला जाएगा। मैंने उनको समझाया, सभी माताओं को भी नशा हो जाना चाहिए। मैंने उन्हें कहा, तुम्हारे पास सबसे बड़ी संपदा है। कौन सी? अरे स्वयं भगवान, ज्ञान तो पीछे। जिनके पास भगवान है उससे बड़ी संपदा कुछ हो सकती है? तो वो तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे, जस्ट इंतजार करो, वेट करो कुछ समय के लिए। उन्हें महसूस होगा, ये संपदा तो कागज थी, इसके पीछे हमने संबंध तोड़ लिए, स्वार्थ को बढ़ावा दे दिया, और ऐसा धन मनुष्य को पाप कर्मों में प्रवृत्त करता है, उससे कोई पुण्य नहीं करता है। हमारी दूसरी बहुत बड़ी संपत्ति है पुण्यों का खजाना, धन। आज मेरे पास है, कल आपके पास होगा, परसों तीसरे के पास होगा। धन कभी स्थिर नहीं रहता। एक भाई को मेरे पास लाए, कहा ये करोड़पति, करोड़पति नहीं उससे भी आगे, और अब उसके पास कुछ नहीं है, सब सरकार ने ले लिया चक्रव्यूह चलाकर। तो जिन्होंने धन को आधार मान लिया वो संसार में सुखी नहीं होंगे। धन स्थिर नहीं है, स्थिर क्या है? पुण्यों की पूंजी। अगर किसी ने अपने धन से पुण्य कमा लिए तो वो पुण्य सदा उसके साथ रहेंगे, चारों युग साथ देंगे। और अगर किसी ने धन से पाप कमा लिया तो न धन साथ देगा और पाप तो उसे दुर्गति के मार्ग में ले ही जाएंगे। सभी भाई बहने इन बातों पे ध्यान दें, संपत्ति के पीछे संबंधों में कड़वाहट न लाएं। माताएं बहुत बैठी हैं, माताओं को बहुत समझदार बुद्धिमान सुखदायी कल्याणकारी होना है, तब माताएं विश्व का कल्याण करेंगी ना। पसंद है, पसंद है ना। संपदा, और बात कह दूं, माताओं की सबसे बड़ी संपदा है उनके चरित्रवान बच्चे या पैसा। पैसा तो बहुत हो लेकिन बच्चे सब बिगड़े हुए हों, मां को भी लात मारते हों, पैसा काम आएगा? इसलिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें सभी माताएं, ये माताओं का काम है। अब कलयुग के अंत में क्या हो गया, माताओं को भी नौकरी करनी पड़ रही है, महंगाई का जमाना हो गया, पढ़ लिख बहुत गए तो सोचते हैं अब घर में रहने के लिए थोड़े पढ़े हैं, मैदान में पहुंच जाएं तो बच्चों की पालना नहीं हो रही है, बच्चों को सुसंस्कारित नहीं किया जा रहा है। माताओं को इस बात पर बहुत ध्यान देना है। तो हमारा त्याग निष्फल न जाए, सबने त्याग किया है। अनेक माताएं ऐसी बैठी होंगी सभा में जिन्होंने जीवन भर गाली खाई हैं, खाई हैं या नहीं, और सुखी रहे हैं, गाली खा खा के भी सुखी रहे हैं, क्योंकि प्रभु प्राप्ति का नशा इतना जबरदस्त है उसमें गालियों का इफेक्ट बहुत हल्का हो जाता है। तो बहुत बड़ा त्याग करके सभी चिंतन करेंगे, हमारा त्याग निष्फल न जाए। त्याग किया है तो सब कुछ पाकर ही रहेंगे, ऐसा न हो सब त्याग कर दिया लेकिन जीवन साधारण बनकर रह जाए और जब हम इस संसार से विदाई लें तो हमें लगे भगवान भी मिला, हमने उसे पहचाना भी, संपूर्ण सत्य ज्ञान भी हमारे पास आ गया, त्याग भी हमने बहुत कर दिया लेकिन भगवान से सब कुछ भाग्य पाया नहीं। ठीक है चिंतन, लेकिन ये चिंतन सबको स्वयं करना है, केवल मेरे कहने से काम नहीं चल जाएगा। रोज 10 मिनट सबको चिंतन करना है, अपने को कार्य व्यवहार में या व्यर्थ बातों में इतना व्यस्त नहीं कर देना है कि हम अपने से मिलना भी भूल जाएं। आजकल समय की एक दूसरी बात भी हो गई कि टीवी इंटरनेट मोबाइल ने लोगों का सारा समय उसमें खर्च करा दिया, तो अपने को देखना भूल ही जाते हैं। इन चीजों पर भी सभी संयम धारण करेंगे, आगे चलें। हम सभी को बेफिक्र बादशाह बनना है। इससे पहले मैं बात याद दिला दूं, बाबा ने सभी को गुड मॉर्निंग और गुड नाइट प्रेरणा दे दी ना, बहुत अच्छे, तुम करो या ना करो मैं तो करने आता ही हूं। 3 दिन हो गए सुने हुए, किसन कौन इसमें पास हुए हैं, हाथ उठाएंगे, हुए हैं पास, कुछ भूल भी गए होंगे, गुड नाइट गुड मॉर्निंग करना भूल गए होंगे। आपको पता रहे जब बाबा साकार में थे तो पार्टियां मधुबन में आती थी, इतने नहीं आते थे, अब मई जून में आते थे भाई बहने, ज्यादा से ज्यादा आ जाएंगे 70-80, बहुत आए तो 100, इससे ज्यादा नहीं। फिर दशहरे दिवाली पर आते थे, 2 ही बार पार्टियां आती थी, रहने सहने का इतना प्रबंध भी नहीं था, सब अपना बिस्तर भी लाते थे तो बाल्टियां भी लाते थे। बाबा ममा रोज रात को सोने के समय हर बच्चे के पास जाते थे, भाइयों के पास भी बहनों के पास भी, सबको गुड मॉर्निंग करते थे, पूछते थे कुछ कमी तो नहीं है, ठंड तो नहीं लग रही, सब ठीक है। उन दिनों यज्ञ में पंखे भी नहीं होते थे क्योंकि ऊपर गर्मी होती नहीं थी, पंखे तो बहुत बाद में लगे। ठंड बहुत होती थी, दिवाली पर जो आते थे बाबा पूछते थे सब कुछ है, बाप था ना माँ बाप। यद्यपि यज्ञ में रजाई बिस्तर होते नहीं थे फिर भी बाबा पूछते थे किसी को कुछ चाहिए, किसी को चाहिए तो थोड़ा बहुत मिलता भी था। हमने देखा दो वो जो लोहे के बने होते हैं ना जिसमें अनाज वनाज भर देते हैं टैंकर से, बस वो ही थे, उनमें बिस्तर रखे रहते थे, 10-15 रहते होंगे। फिर भी बाबा सदा पूछते थे बच्चे कुछ चाहिए, तो रोज रात को गुड नाइट करने जाते थे। वही प्रथा बाबा ने चालू रखी है, सुख संवतन से रोज हरेक का हाल चाल पूछने सोने के समय आते हैं। अब सोच लो हम तब कहां होते हैं, सबको चिंतन करना है, टीवी के आगे बैठे होते हैं बाबा देख के चला जाएगा, गपशप में हैं बाबा आएगा ही नहीं, वो वाइब्रेशंस बाबा को आकर्षित नहीं करेंगे। हम जितने अच्छी स्थिति में होंगे सोते समय भी प्रभु मिलन होगा, और ये बहुत बड़ी प्राप्ति है। उन आत्माओं से भाग्यवान भला कौन होगा, सोए भी जो भगवान के साथ और उठते ही जिनका प्रभु मिलन हो। ठीक है, अब मैं एक सुंदर बात सुना दूं, ये बात मेरे मुख पर आई तो बाबा की एक बहुत नशे की बात जिससे हम बेफिक्र बादशाह बनेंगे। बेफिक्र बादशाह सभी को बनना है, चिंताओं की कोई कमी दुनिया में नहीं है, हर मन चिंताओं से ग्रस्त है, इसलिए बाबा ने कहा तुम्हें बेफिक्र बादशाह बनना है। इससे पहले मैं आपको कह दूं अपने जीवन को इस तरह चलाएं सभी कि जीवन में समस्याएं कम से कम हो। हम अपने जीवन को ऐसा भी बना सकते हैं जिसमें समस्याएं हो ही नहीं, और एक ही सिद्धांत है, अपनी स्थिति को यदि हम समस्या से मुक्त कर लेंगे, अपने मन को यदि हम व्यर्थ संकल्पों से मुक्त कर लेंगे, अपनी प्योरिटी को अगर हम बहुत अच्छा कर लेंगे, अपनी भावनाओं को यदि सद्भावनाओं में बदल देंगे, समस्याएं रहेंगी नहीं। इसलिए जीवन जीना ही ऐसा है कि हम उसमें सारा दिन कुछ साधनाएं अवश्य करते रहें। कौन सी साधना बताई बाबा ने अभी हमें, माताएं बताएंगी। देखो यज्ञ में सेंटर्स में हर घंटे भी गीत बजता है, ट्रैफिक कंट्रोल भी बजते हैं, बहुत भाई बहनों ने मोबाइल में भी चिप डाल ली है जिसमें हर घंटे गीत बजता है, थोड़ा सा 3 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल भी बजता है, इसका फायदा उठाएं। उस समय मैं आत्मा यहाँ चमकती ज्योति, ये मेरा देह है, बिल्कुल अपने को फीलिंग दें, ये मेरा देह है, ये मेरा रथ है, मैं इस पे सवार हूँ, मैं मालिक हूँ मन बुद्धि की, संकल्प दें, चिंतन के साथ अभ्यास करेंगे, अपना स्वरूप भी देखेंगे लेकिन सुंदर चिंतन भी करेंगे। बिना चिंतन के जल्दी ही मन बुद्धि इधर उधर भटक जाती है, अच्छा चिंतन देके बोलो कर सकेंगे। शुरू किया है, 2 दिन पूरे हो गए, 3 किया है, भाई लोग हाथ उठाओ जिन्होंने किया है, शुरू करें अब ध्यान पूर्वक, इससे बहुत फायदा होगा, ये हमारी निराकारी स्थिति बनती जाएगी, और निराकारी स्थिति में सभी संकल्प समा जाते हैं। जहां निराकारी स्थिति होगी चारों डीप साइलेंस होने लगेगी, आपका घर धीरे धीरे शांति का धाम बनता जाएगा, आपके घर में जो भी आएगा उसको शांति की सहज अनुभूति होगी। मेरा तो ये संकल्प है और मुझे बिल्कुल स्पष्ट आभास होता है कि बहुत सारे भाई बहने अपने घरों को शांति धाम बनाएंगे। समझ गए ना? शांति धाम एक परम धाम शांति धाम है, दूसरा हमारा घर पीस हाउस बन जाए जहां आकर आत्माएं शांति चैन विश्राम का अनुभव करें। ये काम माताओं को ज्यादा करना है। तो शरीरीपन का जितना अभ्यास होगा ध्यान देंगे। क्यों जरूरी है? किसी भी चीज के महत्व का जब हमें पता होता है तो हम उसका अच्छा अभ्यास करते हैं ना। हमें पता हो ये दवाई हमें दिन में चार बार खानी है, नहीं खाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो सब काम छोड़ के भी हम दवाई खाते हैं ना। अशरीरी होने से सबसे पहला फायदा, देह के रोगों को कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलेगी। जिन्होंने लंबा काल अशरीरीपन का अभ्यास किया होगा उन्हें पेन महसूस होगा ही नहीं, दर्द नहीं होगा। अशरीरी होते होते हमारे मनोविकार हमसे विदाई लेने लगेंगे, हमारा चित्त शुद्धि की ओर अग्रसर होगा, हमारी भावनाएं निर्मल होने लगेंगी। इस एक अभ्यास में ही बहुत फायदे हैं। योग से विकर्म विनाश होंगे, शक्तियां आएंगी, बाबा के गुण हम में आएंगे, ये शांति और पावरफुल हो जाएगी, परमानंद की अनुभूति होगी। लेकिन अशरीरी बनना हमें बहुत चीजों से मुक्त करेगा। जिनको भी बंधन हो, चाहे वो कुमार हैं, कुमारियां हैं, माताएं हैं, जिनको भी किसी का भी बंधन हो, वो जान लें अगर हम स्वयं को देह के बंधन से मुक्त करते चलेंगे तो स्थूल बंधन स्वतः ही कटते चलेंगे। इसलिए ध्यान पूर्वक देह से न्यारे होने की फीलिंग बढ़ाएं। केवल अभ्यास न रह जाए, ये महसूस होने लगे ये देह अलग मैं अलग, और ये बार बार के अभ्यास से ही होगा। तो संकल्प करें हमें बाबा की हर शुभ इच्छा को पूरा करना है। सवेरे के लिए बाबा ने बोला, अमृत वेले यदि तुम देह से न्यारे होकर बैठते हो तो इसका अर्थ है तुम संसार को शांति का दान देते हो, और अगर तुम स्वदर्शन चक्रधारी होते हो तो सुखों का खुशी का दान विश्व को मिलता है। तो सारे दिन में जितनी बार हमें शरीरी होने का अभ्यास करेंगे अनेक आत्माओं को शांति मिलेगी। बहुत बड़ा पुण्य हो गया ना। इस पर अटेंशन देते हुए सभी अशरीरी होने का कम से कम 10-12 बार अभ्यास अवश्य करें। स्वीकार है? स्वीकार है पीछे वाली बहनों को? हम भगवान की सुनेंगे तो वो हमारी भी सुनेगा, हम उसकी नहीं सुनते तो सुनवाई नहीं होती। फिर कहते हैं हमारी तो बाबा सुनता नहीं। मुझे जब कहते हैं ना, मुझे कई लोग कहते ही रहते हैं, आते हैं पर्सनली मिलने, कि हम तो बाबा को बहुत बुलाते हैं, बाबा तो आता नहीं। आप सब तो कहते हो मीठा बाबा, प्यारा बाबा कहो, मेरा बाबा कहो, बाबा हाजिर हो जाएगा। हमें तो ऐसा लगता नहीं। मेरे मन में तुरंत उत्तर आ जाता है, क्यों नहीं लगता? मैं उन्हें कहता तो नहीं, हम उसकी नहीं सुनते। कितना सुना रहा है, कितने साल बीत गए, और सोचते शिकायत करते हैं वो हमारी नहीं सुनता। हम सुनेंगे, हम उसको बाध्य कर देंगे, वो हमारी सुनवाई करेगा, हमें मदद करेगा। तो हमें स्वयं को बेफिक्र बादशाह बनाना है। मैं आपको एक 5-पॉइंट प्रोग्राम देना चाहता हूं, 5-पॉइंट का प्रोग्राम, 5-पॉइंट फॉर्मूला। हम बेफिक्र बादशाह बने, पहला फॉर्मूला तो यही प्रोग्राम देना चाहता हूं, 5 पॉइंट का प्रोग्राम, 5 पॉइंट फॉर्मूला। हम बेफिक्र बादशाह बने। पहला फॉर्मूला तो यही कि संकल्प कर लें, हमें तो बेफिक्र रहना है। संकल्प, किसी किसी को आदत होती है छोटी छोटी बातों की चिंता करना। छोटी बात हुई, कभी जरा सा बुखार ही हुआ तो चिंता प्रारंभ, बच्चे को सिर दर्द हुआ चिंता प्रारंभ। निश्चिंत रहना, क्या फायदा होगा? समझ लें इस रहस्य को सभी। जितने हम निश्चिंत बेफिक्र बादशाह रहेंगे, समस्याएं हमसे दूर जाती रहेंगी। जितना हम चिंता करेंगे, हमारी शक्तियां क्षीण होती जाएंगी, समस्याओं का प्रकोप बढ़ता जाएगा। बाबा आने वाले समय को ध्यान में रखकर हमें तैयार कराता है कि मेरे बच्चे बेफिक्र बादशाह बन जाएं, क्योंकि संसार में जो कुछ होने जा रहा है उसको देखने की शक्ति हर मनुष्य में नहीं होगी। मुझे याद रहता है महाभारत युद्ध से पहले व्यास आए हस्तिनापुर में और उन्होंने सत्यवती, अंबालिका और अंबिका इन तीनों को कहा कि अभी सृष्टि पर जो कुछ होने जा रहा है उसको तुम देख नहीं पाओगी, इसलिए यहां से चलो मेरे आश्रम में, वन में। यही बात बाबा भी कहते हैं, जो कुछ खेल इस सृष्टि पर होने जा रहा है उसको ये आंखें, ये बुद्धि देख नहीं पाएगी, इसलिए अभी से बाबा तैयार करता है, बेफिकर बादशाह बन जाओ, सारी संपत्ति चली जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी संपत्ति हमारे साथ है, श्रेष्ठ भाग्य हमारे साथ है, जिसका भाग्य अच्छा न हो संपत्ति भी उसे समय पर साथ नहीं देगी। भाग्य अच्छा नहीं है वो लाख रुपए देंगे पानी का गिलास नहीं पाएंगे, और भाग्य अच्छा है तो पानी भरपूर सामने होगा। हमारे साथ भाग्य विधाता ही है, वही हमारा है, उसकी छत्र छाया में हम रहते हैं, ये हमें नशा हो जाए। बेफिक्र बादशाह, पहला संकल्प, दूसरा मुझे कौन साथ दे रहा है, कौन साथ दे रहा है, जिसका साथ मिलने के बाद संसार की कोई शक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जिसका साथ मिलने के बाद माया भी दूर से ही सलाम करने लगती है, समस्याएं परास्त हो जाती हैं, जिसका साथ मिलने के बाद संसार में और किसी के साथ की आवश्यकता नहीं रहती। बहुत सुंदर महावाक्य मुझे याद आ गया, बहुत पुरानी मुरलिका है, चाहे दूसरी ओर अक्षौणी सेनाएं हो और तुम अकेले, लेकिन जीत तुम्हारी होगी क्योंकि तुम्हारे साथ सर्वशक्तिवान है। ये चीजें हमें बेफिक्र बादशाह बनाएंगी, कौन मुझे साथ दे रहा है, किसने मेरे सिर पर हाथ रख दिया है, किसने मेरा हाथ थाम लिया है, कौन मेरी जीवन नैया का खिवैया बन गया है, नशे में लाएं इसको, चिंतन में लाना पड़ेगा। तो आदत डालें छोटी बातों में बेफिक्र रहने की शुरुआत करेंगे। तीसरी बात बाबा ने सुना दिया है, मेरे को तेरे में बदल दो, ये समर्पण भाव। मेरा चिंता लाता है, सब कुछ तेरा निश्चिंत करता है, उसमें भी चिंताएं, परेशानियां, घर की समस्याएं, धन की समस्या, बच्चों की समस्या, उनकी पढ़ाई की चिंता, क्या होगा इनके साथ, कोई छोटी बात आ जाए बाबा के हवाले करने की आदत डालें। मनुष्य भूल जाता है कि वो दोनों बाहें फैलाकर हमें कह रहा है, लाओ अपने मन के सारे बोझ मुझे दे दो। देने की आदत डालें, अपने को हल्का करें सभी। किसी किसी माताओं के सिर पर बोझ दिखाई दे रहा है, मुझे गठरियां रखी हैं कईयों ने, उतार दो जरा, किसको देंगे, विश्वास है या नहीं उस पर कि वो सारे बोझ संभालेगा, उसकी शक्तियों में विश्वास हमें निश्चिंत करेगा, अचल अडोल बनाएगा। इसमें सभी ब्राह्मणों के साथ बहुत गड़बड़ हो रही है, बाबा को दे तो देते हैं पर विश्वास नहीं रहता, चिंता खुद करते रहते हैं। सोचो अगर बाबा को बोझ देकर, बाबा को समस्याएं अर्पित करके हम चिंतित हैं, तो इसका अर्थ है बाबा की शक्तियों में हमें विश्वास नहीं है। ठीक बात है, सब चिंतन करें गुह्य बात पर, जिसको हमने दे दिया वो सर्वशक्तिवान है, समय कल्याणकारी है, रामा भी कल्याणकारी है, और बाबा तो सदाशिव है, सदा कल्याणकारी। उसके हाथों में हमने कुछ दे दी बात, वो उसे ठीक करेगा, लेकिन अभी नहीं। मनुष्य क्या सोचता है, अभी ठीक कर दे। कर्मों के कुछ नियम है ना, सिद्धांत है, बस दे दिया, वेट एंड सी, धैर्यता पूर्वक, ज्यादा समय नहीं लगेगा, बाबा उस बात को ठीक कर देगा। चौथा पॉइंट, अपनी शक्तियों में विश्वास। वो बात मैं सुना रहा था, बाबा ने बहुत सुंदर बात एक मुरली में कही, इसका हम फायदा उठाएंगे। बच्चे अपने भाग्य को देखो, तुम्हें परमात्म पालना मिल रही है। सवेरे उठकर सवेरे तुम्हें बाबा जगाता है, रात को सुलाता है, सवेरे पढ़ाने आता है, फिर ब्रह्मा भोजन खिलाता है। किसी बच्चे को दुख में आंसू आते हैं तो बाबा आकर उनके आंसू पहुंचता है। माताएं सुन लिया, बाबा आकर आंसू पहुंचता है। फिर बाबा ने आप ही कहा, अब चलो सभी नशे में, कि अगर दुनिया वाले ये बात सुने तो कहेंगे भगवान इनके लिए खाली बैठा है क्या। कौन है ये लाडले, जिन्हें उठाने भी भगवान आता है, भोजन खिलाने भी वो आता है। बाबा ने उत्तर दिया, स्वीकार करें सभी इस उत्तर को। बाबा ने कहा, तुम उन्हें कह दो इस समय भगवान हमारे लिए खाली ही बैठा है। मुझे बहुत नशा चढ़ा इसका, मैंने स्लोगन बना दिया अपने लिए, भगवान खाली, मैं इसका कैसे फायदा उठाऊं। खाली है श्रेष्ठ बुद्धि देने के लिए, संपूर्ण शक्तियां देने के लिए, अनंत वरदान देने के लिए भगवान खाली है। निरंतर हमारी समस्याओं को हल करने के लिए खाली है। हजार भुजाओं की छत्र छाया लगाकर हमें सुरक्षित करने के लिए खाली है। न हमें डर न चिंताएं। चिंतन करेंगे और बेफिक्र बादशाह बन जाएं। तो चौथी बात मैं आपको कह रहा था, अपनी शक्तियों में विश्वास। समस्याएं आई हैं, बातें आई हैं, ये कुछ नहीं है, हम इनसे अधिक शक्तिशाली हैं। हमारे पास ज्ञान की शक्ति है, हमारे पास योग की शक्ति है, हमारे पास प्योरिटी की शक्ति है, पुण्य कर्मों की शक्ति है। ये खजाने भी हैं तो शक्ति भी हैं। हम बहुत शक्तिशाली हैं, विश्वास कर लें, हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। परमात्म शक्तियां हमारे पास हैं, हम संकल्प से ही सब कुछ कर सकते हैं। स्वीकार करें सभी, हम संकल्प से ही सब कुछ कर सकते हैं। पर वो जो मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, जिन्हें याद है परमात्म शक्तियां मुझे साथ दे रही हैं। और पांचवी पॉइंट, ड्रामा। ड्रामा हमें बेफिक्र बनाता है, ड्रामा का ज्ञान, इसको कहेंगे ज्ञान का बल। ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा में सब कुछ अच्छा होने जा रहा है, जो कुछ होगा वो पूर्व निश्चित है, हम बेफिक्र बादशाह बन जाएं। ऑप्शन